सुभाष घई की फिल्म रामलखन 1989 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक खराब मौसम से होती है, जिसमें शारदा भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने आती है और पुजारी उससे पूछते हैं कि क्यों वो हर दिन चाहे जैसा भी मौसम हो शिव जी के पास आती है। वो बताती है कि उसकी कहानी फिलहाल पूरी नहीं हुई है, जब पूरी होगी तो वो जरूर बताएगी।
शारदा बेटी देखो मौसी आई हैं, सब ठीक हो जाएगा।
पाला गे दादाजी।
जीते रहो बेटा राम, आ बैठ।
दादाजी आज मेरा छोटा भाई आएगा ना?
हाँ बेटा राम, आज तुम्हारा छोटा भाई आएगा लखन।
बाबा सूरज चढ़ाया, प्रताप भैया नहीं आया अभी तक।
फिकर तो मुझे भी बहुत लग रही है उसकी, परेशान होगा बेचारा।
लेकिन वकील साहब मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
आप सिंह अदालत ने भानु और विशंबर को स्मगलिंग के जुर्म में 4 साल की सजा तो दे दी है।
लेकिन वकील साहब उनका ये ढेर सा उठाया हुआ कर्जा कौन चुकाएगा?
अरे भाई ये सारा कर्जा तुम्हें उठाना पड़ेगा।
मुझे? नहीं नहीं वकील साहब, मैंने कभी कर्जा नहीं लिया।
देखो प्रताप सिंह, कानूनी तौर पर अगर एक भागीदार जेल में चला जाए तो उसका सारा कर्जा दूसरे भागीदार को चुकाना पड़ता है, और फिर ये सारा कर्जा तुम्हारी कंपनी के नाम से लिया गया है।
लेकिन वकील साहब मैं कमीनों, क्या कसूर था हमारा? यही कि हमने तुम्हें चाचा के लड़के समझ में घर में शरण दी, धंधे में भागीदार बनाया, यही था मेरा कसूर, यही था कसूर। बोलो हराम दादे, चूहा खेलते रहे, मगलिंग करते रहे, कंपनी के नाम पे कर्जा उठाते रहे, तुम्हें कुत्ते की मौत की सजा मिलनी चाहिए विशंबर, कुत्ते की।
प्रताप सिंह चुप हो जाओ, ऐसा ना हो कि कानून की जकड़ में तुम भी आ जाओ।
और वहीं मंदिर में बैठकर वो अपनी बीती कहानी को याद करती है, कैसे जब वो माँ बनने वाली होती है और दूसरी तरफ उसका पति ठाकुर प्रताप सिंह अपने दोनों चचेरे भाई विशंबर और भानु के विश्वासघात से परेशान था। उन दोनों ने कारोबार के नाम पर काफी कर्जा ले रखा था और उन सारे पैसों को जुए और शराब में उड़ा दिया था, और उन दोनों को 4 साल के लिए जेल हो जाती है। इधर शारदा अपने दूसरे बेटे को जन्म देती है। राम बहुत खुश होता है, जो शारदा का बड़ा बेटा होता है। उसने अपने भाई का नाम लखन रख दिया। घर में काफी खुशी का माहौल बन जाता है।
दादाजी दादाजी मेरा लखन आ गया। वकील चाचा मेरा लखन आया है, लखन।
अच्छा?
शंभू काका मेरा लखन आया है।
क्या?
मेरा भैया लखन भैया, मुझे बताओ। माँ देखो लखन भैया।
मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन।
चार साल की सजा काटने के बाद जब विशंबर और भानु लौटते हैं तो ठाकुर प्रताप सिंह के पिता बाबा उन्हें 1 महीने तक के लिए हवेली में रहने की अनुमति दे देते हैं। वो उन दोनों के खतरनाक इरादों से अनजान रहते हैं, उनके सुधरने की आस लगाए रहते हैं। दोनों भाइयों ने वकील को अपनी तरफ करके वसीयत पे बाबा का सिग्नेचर ले लिया और सारा कारोबार जमीन जायदाद सब अपने नाम पे कर लिया। प्रताप और राधा के नाम उन्होंने नाम मात्र की जगह छोड़ी। दोनों भाइयों ने मिलकर बाबा के मौत की साजिश रची और कामयाब भी हो गए। बाबा की मौत के बाद प्रताप को हवेली से बाहर निकाल देते हैं। भानु विशंभर और उनकी पत्नी शारदा पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं और उसे काफी जलील करते हैं। रात को हवेली में भानु विशंभर वकील और केसरिया विलायती चारों शराब पीते रहते हैं और ठहाके लगाते हैं। पता नहीं कैसे वकील की अंतरात्मा जाग जाती है। वो अचानक उठकर खड़ा हो जाता है और सारा सच सबके सामने कहने को कहता है। वो बताता है कैसे उन लोगों ने बाबा से इंग्लिश में वसीयत लिखकर उस पर सिग्नेचर करवा लिए थे, जबकि बाबा को इंग्लिश आती ही नहीं थी। वो सबको ये बात बताने को कहता है। केसरिया विलायती बिना देर किए उसे वहीं जान से मार डालता है। ये सारी घटना प्रताप अपनी आंखों से देख लेता है और पुलिस स्टेशन जाने को दौड़ता है, मगर तीनों मिलकर शारदा की आंखों के सामने उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। शारदा भगवान शिव के सामने शपथ लेती है कि वो तब तक अपने पति की अस्थियों को नहीं बहाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। वो अपने दोनों बेटों के साथ गांव छोड़कर मुंशी देवधर के यहाँ चली जाती है।
पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं?
बेटे, ये तुम्हारे बाबा की अस्थियाँ जमा कर रहा हूँ।
किस लिए?
हिंदू धर्म में मनुष्य के मरने के बाद उसकी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाती हैं, ताकि उसकी आत्मा को संपूर्ण शांति मिल सके। बेटा,
बहन जी, ये प्रताप जी की अस्थियां लीजिए।
दीजिए।
और ये जो अस्थियां हैं वो राम लखन द्वारा ही गंगा जी में प्रवाहित हो सकती हैं।
मालूम है, चलो। मैं अपने पति की अस्थियां गंगा में नहीं बहाऊंगी। मैं उन अस्थियों के कलश को जीवित ठाकुर प्रताप सिंह बनाकर अपने पास रखूंगी। एक राज बनाकर तू जहां भी रहेगा मैं रोज आऊंगी। इंतजार करूंगी तेरे न्याय का। न्याय, 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 ये प्रतिज्ञा है मेरी।
राम लखन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, मगर दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग है। जहां लखन काफी शरारती होता है, मुंशी देवधर को छेड़ना, स्कूल न जाना, हर रोज शरारत करना, ये उसके लिए आम बात होती है, वहीं राम काफी समझदार था। वो अपनी माँ का ख्याल भी रखता था। शारदा जो मंदिर में बैठी ये सब बातें याद कर रही थी, मुंशी देवधर की आवाज से जैसे उसकी आंखें खुल जाती है। वो उन्हें बधाई देते हैं कि बरसों की तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, अब राम बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। राम काफी ईमानदारी से अपना काम करता है और अपने चाचा के माल को भी रोक कर उसकी तलाशी लेता है। विशंभर और उनकी पत्नी शारदा को साड़ियों का तोहफा भिजवाती है ताकि राम लखन को अपने तरफ कर पाए, मगर शारदा उन्हें चेतावनी देकर आती है। इधर लखन अपनी शरारतों और मस्ती में डूबा हुआ शिवरात्रि मनाता है।
My name is Lakhan. सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मौजी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 4 4 2 1 माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
लखन और देवधर की बेटी राधा एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं, मगर देवधर लखन की शरारतों से तंग रहता है। राम भी कमिश्नर साहब की बेटी गीता को चाहता है। लखन दोनों के साथ एक शरारत करता है और एक दूसरे से मिलवाता है। गीता राम से अपनी नाराजगी गीतों के जरिए बयान करती है।
हेलो
राम साहब, मैं शांता भाई बोल रही हूँ।
शांता भाई, हाँ क्या बात है?
गीता मैम साहब ने कहा कि आप फौरन घर आ जाएं, वो बाथरूम में गिर पड़ी है।
क्या?
उन्हें बहुत चोट आई है।
मैं भी आया।
हेलो, मैं शांता भाई बोल रही हूँ।
शांता भाई, मैं बोल रहा हूँ सेवानंद, राम साहब का असिस्टेंट। कैसी हो? अच्छी हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गीता मैम साहब से कहना कि राम साहब ने कहा है क्या कि हो जाए तैयार, जाना है बाहर, वक्त कम मंजिल है दूर, लेकिन जाना है जरूर।
अच्छा जी।
माय नेम इज
शांता। ओ शांता, आई मैम साहब। जरा ऑफिस में फोन करके पता करना कि राम साहब निकले या नहीं। पता नहीं क्या समझने लगे अपने आप को, 7 दिन से जनाब का आता पता नहीं है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और आज अचानक मेरी याद आ गई तो हवाई जहाज पर चढ़ के सेवानंद से फोन करवा दिया कि तैयार हो जाओ। खुद फोन नहीं कर सकते क्या?
विशंबर का बेटा देबू अमेरिका से लौट कर आता है। वो राधा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और लखन वहाँ पहुँचकर उसकी जबरदस्त पिटाई करता है। विशंबर देवधर को लालच देकर राधा की शादी देबू से फिक्स कर देता है। लखन इस बात से नाराज होकर अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि चढ़ते सूरज को हर कोई चाहता है, इसीलिए उसे बहुत बड़ा इंसान बनना होगा ताकि देवधर खुद उसकी शादी राधा से करवानी चाहे। लखन अपनी माँ की सीख को पूरी तरह नहीं समझ पाता। उसे लगता है बड़ा इंसान बनने के लिए उसे पैसा वाला बनना जरूरी है। बस फिर क्या था, केसरिया विलायती को पकड़कर वह कमिश्नर का दिल जीत लेता है और कमिश्नर उसे 6 महीने के लिए पुलिस ट्रेनिंग पर भेज देते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद देबू के बर्थडे के मौके पर विशंबर सबको इनवाइट करता है, जिसमें गीता, राम और कमिश्नर साहब सभी लोग रहते हैं। विशंबर वेश्याओं को नाचने और गाने के लिए बुलाता है और राधा को बेइज्जत करने के लिए उससे भी गाना गाने को कहता है। राधा गाना भी गाती है और नाचती भी है, मगर वो अपने लखन के लिए नाचती और गाती है।
अरे राधा गुणवंती, उठो, सारी महफिल की नजरें तुम्हारी तरफ लगी हुई हैं। उठो, अपना मधुर गीत हमारे सामने आकर शुरू करो। आओ आओ ना। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। जाओ देबू के पास।
सागा मेरे का सागरी
शारदा अपने दोनों बेटों की कामयाबी की मन्नत पूरी होने पर अमरनाथ की यात्रा पर चली जाती है और इधर लखन अपने कर्तव्य के पथ से भटक कर घूस लेना शुरू कर देता है। राम के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह बस पैसा कमाना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, चाहे जैसे भी हो। उसे ऐसा करने के लिए विशंबर का साथ देना भी गलत नहीं लगता और वह गैर कानूनी सामान को भी बेरोक टोक पास कर देता है। एक तरफ राम लॉकअप में केसरिया विलायती से सर जॉन और विशंबर से उसके ताल्लुकात के बारे में पूछताछ करता है, दूसरी तरफ लखन केसरिया विलायती को भगाने के लिए सर जॉन से घूस लेकर उसे लॉकअप से भगा देता है। राम को शक है कि केसरिया विलायती को भगाने में लखन का हाथ है और उसका शक तब पक्का हो जाता है जब सर जॉन के घर पार्टी में वो लखन को नाचते गाते देखता है।
तुम जैसे खिलाड़ी से मिलकर हम बहुत खुश हुए लखन।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
बैड ब्रदर बड़ा ही होनार हीरो है सर जॉन।
केसरिया को छुड़ाने की खुशी में आज रात सर जॉन ने तुम्हारे लिए एक शानदार डांस पार्टी रखी है।
डांस पार्टी? विव्या जी, क्या मैं अपने पुराने गरीब दोस्तों को भी बुला सकता हूँ?
हरगिज नहीं,
बिल्कुल नहीं।
विव्या जी, वो लोग भी बहुत अच्छा डांस करते हैं।
देखा है ये अंग्रेजी डांस है भतीजे जी, कोई गली कूचों में ढोल बजाकर भीख मांगने वालों का डांस नहीं है। देवू ने अमेरिका से डांस करने वालों को इस पार्टी में बुलाया। देखना, जब हमारा देवू गाएगा डांस करेगा तो विव्या जी भी देख के दंग रह जाएंगी।
ओ रियली? तो फिर क्यों ना दोनों पार्टियों को बुलाया जाए और एक मुकाबला हो जाए,
और इस मुकाबले में जीतने वाले को हम मुंह मांगा इनाम देंगे।
मुंह मांगा?
मुंह मांगे इनाम का मतलब समझता है तू बेटा? अरे वो इनाम में तेरी राधा को भी मांग सकता है।
राधा?
हाँ।
राधा को तो मैं उसे आधा पी नहीं दूंगा मामा।
देख भांजे, अगर आज की रात तेरी हार हुई तो समझना हम सब बर्बादी के जाल में फंस गए।
अरे मामा, अमेरिका में पूरे 12 साल डांसिंग की है मैंने, ये हिंदुस्तानी टट्टू क्या नाचेंगे मेरे साथ?
वो पान जो वो लोग खा रहे हैं उसमें देवू ने वो गोली मिलाई है कि खाते ही सब पागल हो जाएंगे।
वो पान में कुछ गड़बड़ है।
संभालो दोस्त, दुश्मन हमें मिटाने के चक्कर में है।
केसरिया विलायती को निकालने में किसी अपने ही आदमी का हाथ था और इसका पता तुम्हें लगाना होगा राम। आप लोग ये ना भूलें कि अगर केसरिया विलायती मुझे 30 दिन में नहीं मिलता तो शायद मुझे सरकार को इस्तीफा देना पड़े। कौन हो सकता है ऐसा विश्वासघाती?
दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है जीरो?
घर घरे हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम, करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मैं हूँ वो हीरो, आहा हीरो, मैं हूँ वो हीरो, आहा हीरो, ये है वो जीरो। करता नहीं कोई मुझे सलाम, लेता नहीं कोई मेरा नाम, 10 को मैं 10 लाख करके दिखा दूं, 10 लाख को हाथ करके दिखा दूं, दिखा दूं, मैं हूँ वो जीरो, जीरो, मैं हूँ वो जीरो।
राम और लखन दोनों भाइयों के बीच पड़ी फूट को विशंबर दरार बना देता है। लखन घर छोड़कर चला जाता है। राधा भी उससे अपना रिश्ता तोड़ लेने की बात करती है। दोनों भाइयों में माँ का मंदिर अपने पास रखने के लिए बहस शुरू होती है और बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। गीता और काशीराम बीच में आकर झगड़ा शांत करते हैं। शारदा जब तीर्थ से वापस आती है तो लखन उसे अपने नए घर में लेकर जाता है। उसे सब कुछ पता चलने में देर नहीं लगती। ये सब जानकर मानो उस पर कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। उसकी ऐसी हालत हो जाती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। वो गुस्से से लखन के घर का सारा सामान तोड़ डालती है और भगवान शिव से कहती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लखन को पूछताछ के लिए CBI पकड़ कर ले जाती है, मगर वो वहाँ से अपने दोस्तों को ये कहकर भाग निकलता है कि उसे अपने माँ की प्रतिज्ञा पूरी करनी है और वो प्रतिज्ञा पूरी करके लौटेगा। वह सर जॉन के पास जाता है जहाँ उन सबको पहले से लखन के बारे में सब कुछ मालूम रहता है। वो सब मिलकर लखन को बहुत मारते हैं। विशंभर ने राधा को यहाँ बुला कर रखा था। सर जॉन उससे शादी करना चाहता है। देबू राधा के मन में लखन के प्रति शक पैदा कर देता है और राधा लखन को गलत समझती है। वह सर जॉन से शादी करने को तैयार हो जाती है, मगर लखन से एक बार मिलने की शर्त पे।
इंस्पेक्टर राम, मैं सर जॉन बोल रहा हूं। तुम्हारा भाई हमारे पास जिंदगी के लिए तड़प रहा है।
हमने सोचा कि जो काम लखन पूरा ना कर सका उसे राम पूरा कर देगा।
तुम चाहो तो अपने भाई की जिंदगी बचा सकते हो। हमारे आदमी तुम्हें हर काम समझा देंगे।
तुम अकेले आओगे चौकी नंबर 7 पर।
तुम यानी सिर्फ तुम।
मतलब ये कि सर जॉन की धमकियों से सहम कर हम काम करें? अरे ये तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान है।
ना, ऐसा कभी नहीं होगा।
तो आपका मतलब है कि हम लखन को वहीं छोड़ दे खत्म होने के लिए? आप लोग होश में तो हैं?
तो क्या करें बेटी, उनके सामने झुक जाएं?
हाँ पापा, राम को झुकना होगा, इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि लखन राम की जिंदगी है और राम लखन के बिना नहीं जी सकता।
रह लूंगा मैं उसके बिना, रह लूंगा। क्या हर बार मेरी परीक्षा लेगा वो? हर बार मुझे दुख देगा? जी लूंगा मैं उसके बिना।
राम, लखन, लखन, ट्राई लखन, ट्राई, ओपन योर आईज लखन।
मेरा सुना नहीं, अब अपनी आंखों से ही देख लो।
ट्राई लखन।
इश्क है, सिर्फ इश्क। लखन विविया से ही शादी करने वाला है।
काशीराम 9 घंटे हो गए राधा को लेकर गए हुए।
कौन लेकर गया?
अरे वही बिशंबर और देबू।
क्यों कर?
ये कहकर कि किसी झंडे वाले बाबा को उसकी शादी की कुंडली दिखानी है, पर अब तक आए क्यों नहीं आ?
सेठ जी मन ने तो लग गए, आपकी आंखा में मिर्ची डाल गए वो।
वो कैसे?
असलम, जरा सेठ जी ने आके वो लखन का किस्सा तो सुना।
इससे पहले कि आज रात की महफिल में तुम कुछ नाटक करो, हम तुमसे आखिरी बार पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हें हमसे शादी करने से इनकार है?
जी नहीं, मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है।
क्या?
शादी से पहले एक बार आपको मेरे सामने लखन को लाना होगा।
क्यों?
क्या तुम उसे छुड़वाओगी
या मार डालोगी उसे? इसका जवाब आपको वही मिलेगा।
खेल अच्छा रहेगा।
फिकर ना करो सरजान, आज करोड़ों की कोकीन तो श्री राम ही निकालेंगे। तब तक आप राधा के साथ शादी के ढोल बजाइए।
लखन ने सर जॉन का बहुत सारा गैर कानूनी सामान पास करवा दिया था, मगर कुछ सामान अभी भी फंसा था। तो लखन के उस अधूरे काम को पूरे करने के लिए और लखन को छुड़ाने के लिए सर जॉन राम को ब्लैकमेल करता है। काम होने के बाद केसरिया विलायती राम पे गोली चला देता है, मगर वो बच जाता है। उधर शारदा देवी और गीता भी लखन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती हैं।
शेर का शिकार करना ना तो बनिए का धर्म है और ना ही कर्म। इधर देख
बापू,
अगर किसी ने जरा सी भी हरकत की तो राधा को भून के रख दिया जाएगा। देवधर, तूने चाल चली तो सही, लेकिन पूरी सफाई के साथ नहीं।
गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम निमामि विभुम विरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप वलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम।
शंभर, देखो कौन खड़ा है तुम्हारे सामने। तुम्हारा काल जो ठीक निश्चित समय पर आ पहुंचा है। ये माँ है उस राम की, जिसके लखन जैसे भाई को तुमने उससे जुदा कर दिया। ये माँ है उस लखन की, जिसको तुमने भ्रष्टाचार के गंदे नाले में फेंक दिया। ये पत्नी है उस ठाकुर प्रताप सिंह की, जिसके खून के धब्बे आज भी मेरी इस चुनरी में लगे हुए हैं। देख सकते हो धब्बे? पहचान सकते हो? नहीं तो देखो। देवधर, राधा बेटी को ले जाइए।
देवधर, काशीराम और राम भी एक एक कर वहां पहुंचते हैं, जहां लखन को सर जॉन ने बंद कर रखा था। अब राम लखन दोनों भाई मिलकर अपने पिता ठाकुर प्रताप सिंह के खून का बदला और अपनी मां के साथ हुई सारी नाइंसाफी का बदला लेते हैं और जमकर सबकी धुलाई करते हैं। दोनों फिर से राम और लखन से राम लखन बन जाते हैं और अपनी माँ शारदा देवी की प्रतिज्ञा और प्रतिशोध दोनों पूरा करते हैं। शारदा भगवान का धन्यवाद करती है और दोनों भाइयों की शादी कर देती है। इस तरह राम को गीता और लखन को उसके बचपन का प्यार राधा मिल जाती है।